प्रस्तुत है आज के समाचार भव्या पांडे के साथ। इस बुलेटिन में एक समीक्षा में पाया गया ऑस्ट्रेलिया का प्रवासन कार्यक्रम अत्यधिक कुशल लोगों को आकर्षित करने में रहा विफल। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने दवा की कमी के मुद्दे को किया संबोधित और फुटबॉल में आर्सेनल के मैनेजर माइकल आर्टेटा का कहना, मैनचेस्टर सिटी से 4-1 की भारी हार के बाद आर्सेनल एक बेहतर पक्ष से हारा है। अब समाचार विस्तार से। गृह मामलों की मंत्री क्लेयर ओनील ने देश की प्रवासन प्रणाली में बड़े नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। उनकी घोषणाएं एक समीक्षा के बाद आई हैं, जिसमें पाया गया है कि प्रवासन कार्यक्रम उसके असल उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं था। ये कार्यक्रम सबसे कुशल लोगों को आकर्षित करने में विफल रहा और व्यवसायों को श्रमिकों तक कुशल पहुंच देने में भी खास कामयाब नहीं रहा है। प्रस्तावित परिवर्तनों में एक 3 भाग का मॉडल भी शामिल है। इनमें पहले तेजी से बदलाव के साथ एक अत्यधिक कुशल धारा और एक मध्य धारा शामिल है। इसमें डेटा संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना और निर्णयों को जॉब्स और कौशल ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा जाएगा। सुश्री ओनाइल का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए परिवर्तन वैश्विक टैलेंट को खोजने एवं वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है।
Our migration system is suffering from a decade of genuinely breathtaking neglect. It is broken, it is failing our businesses, it is failing migrants themselves. And most important of all, it is failing Australians. And that cannot continue because we as a country face some big national challenges that migration can help us resolve. Our economy is stuck in a productivity rut and Australians are suffering because of it. Migration can help us change that.
अन्य परिवर्तनों में अस्थायी कुशल प्रवासियों के लिए 1 जुलाई से $16,000 की वेतन वृद्धि और हजारों अन्य लोगों के लिए वर्ष के अंत तक स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंसी की पात्रता भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने फार्मेसी गिल्ड के दावों के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा है कि फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम में बदलावों से दवाओं की कमी हो जाएगी। सितंबर में शुरू होने वाले बदलावों के तहत कुछ ऑस्ट्रेलियाई एक प्रेस्क्रिप्शन पर 60 दिन तक दवा पाने के पात्र होंगे। फार्मेसी लॉबी ग्रुप का कहना है कि परिवर्तन से दवा की कमी हो जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि ऐसा नहीं होगा।
7 of these 325 is the advice I've received from the medicines authorities. In addition to that, there are some brands of medicines that are in short supply as well, but the advice to me from the medicines authorities is that there are alternative brands available, for example, for people who need cholesterol medication or blood pressure medication. So I think this is a case of the pharmacy lobby seeking to sort of ramp up concerns that people might have about a policy that just makes good sense.
वित्त मंत्री कैटी गैलेगर का कहना है कि जॉब सीकर भुगतान की अटकलों के बावजूद जीवन यापन की लागत के उपाय अब भी फेडरल बजट में शामिल होंगे। सरकार की आर्थिक समावेशन समिति द्वारा पर्याप्त वृद्धि की सिफारिश के बाद कई सरकारी बैकबेंचर्स ने वेलफेयर भुगतान में वृद्धि के लिए एक ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। सेनेटर गैलेगर ने बजट में जॉब सीकर के लिए योजनाओं की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसके बजाय उन्होंने 2 सप्ताह से कम समय में वित्तीय विवरण सौंपे जाने पर कठिन निर्णय लेने का संकेत दिया है। उन्होंने एबीसी को बताया है कि सरकार उन लोगों के लिए सही काम करने की कोशिश कर रही है जो एक कठिन वित्तीय माहौल में संघर्ष कर रहे हैं।
My job and the job of the treasurer, the job of the ERC is to look at what is possible. What is the best way of providing support to vulnerable Australians within a context, within a budget that's got a range of pressures?
फेडरल सरकार ने स्वदेशी संगठनों के साथ साझेदारी में फर्स्ट नेशन वाटर होल्डिंग मॉडल विकसित करने के लिए $9.2 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की है। एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग एक दशक से अधिक समय से स्थायी जल धारण व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। फर्स्ट नेशंस के लोगों के पास मूल स्वामित्व के माध्यम से भी लगभग 40% ऑस्ट्रेलियाई भूमि का अधिकार है, फिर भी उनके पास 0.2% से कम सतही जल अधिकारों का स्वामित्व और नियंत्रण है। नेटिव टाइटल ये स्वीकार करता है कि स्वदेशी लोगों के पास कानून और रीति रिवाजों की अपनी व्यवस्था हो जिसके द्वारा उन्हें भूमि और जल पर अधिकार है और ये प्रणालियां उपनिवेशवाद से परे हैं। नेटिव टाइटल लेजिस्लेशन के तहत सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए छोटी मात्रा के अलावा पानी को स्वयं लेने या प्रतिबंधित करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है। नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम को खत्म करने वाले सिंडिकेट्स को लगभग $50 मिलियन की फंडिंग द्वारा समर्थित एक धोखाधड़ी संबंधित कार्रवाई में लक्षित किया जाएगा। आने वाले फेडरल बजट में इस योजना के भीतर धोखाधड़ी और गैर अनुपालन भुगतानों को लक्षित करने के लिए धन शामिल होगा। आवंटित $48.3 मिलियन NDIS में 200 कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए नई प्रणालियों की ओर जाएंगे। NDIS मंत्री बिल शॉर्टन का कहना है कि ये फंडिंग विकलांग लोगों की सहायता के लिए धन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा है कि सबूत बताते हैं जटिल आपराधिक नेटवर्क NDIS फ्रॉड में शामिल है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि सरकार अपने सहयोगियों के साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को युद्धग्रस्त सूडान से वापस लाने में मदद करने की ओर काम कर रही है। ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा आलोचना के बाद हुआ है जो संघर्ष में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे समय में सरकार द्वारा परित्यक्त महसूस कराया गया जब अन्य देश अपने लोगों को जल्द और सुरक्षित रूप से घर लौटने में मदद कर रहे थे। श्री अल्बनीसी ने अफ्रीकी राष्ट्र में लड़ाई को समाप्त करने और शांति बनाए रखने का आह्वान किया है।
This is a dangerous circumstance. There are over 100 Australians are in Sudan, and we are doing our best to reach out to them to provide them with support.
वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने फ्लोरिडा रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डी सैंटिस के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है जिससे एक वैश्विक मनोरंजन दिग्गज और संभावित व्हाइट हाउस दावेदार के बीच झड़प तेज हो गई है। अपने मुकदमे में डिज्नी ने डी सैंटिस और उनके समर्थकों पर अवैध रूप से राज्य सरकार का उपयोग करने के लिए एक कंपनी को दंडित करने का आरोप लगाया जिसे फ्री स्पीच के अधिकारों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। ये झड़प पिछले साल तब शुरू हुई जब डिज्नी ने छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअलिटी और लैंगिक पहचान की कक्षा में चर्चा पर प्रतिबंध लगाने वाले फ्लोरिडा कानून की आलोचना की थी। गवर्नर डिसांटिस ने सार्वजनिक टिप्पणियों में बार बार हमला किया है जिसे उन्होंने वोक डिज्नी यानी जागृत डिज्नी के रूप में वर्णित किया है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में आज के दिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 66 सेंस है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत ₹54.17 हो गई है। अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 8वें मैच में शानदार जीत हासिल की। बेंगलुरु के मैदान पर बुधवार यानी कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 21 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में केकेआर के बल्लेबाज और गेंदबाज ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फगन का कहना है कि तस्मेनिया की अपनी AFL टीम होने की घोषणा के बाद वे तस्मेनिया की AFL टीम के साथ शामिल होना पसंद करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि फेडरल सरकार जल्द ही राज्य की राजधानी में एक नए स्टेडियम के लिए अतिरिक्त $240 मिलियन की घोषणा करेगी। AFL ने कहा है कि प्रतियोगिता में प्रवेश होबार्ट के तट पर $715 मिलियन के स्टेडियम के निर्माण पर निर्भर करता है। नए क्लब के पहले वरिष्ठ कोच बनने के लिए तस्मेनियन क्रिस फगन को देखा जा रहा है। 61 वर्षीय ने जोर देकर कहा है कि वे संतुष्ट हैं और ब्रिस्बेन टीम के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन भविष्य में संभावित विस्तार टीम में वे नई भूमिका निभाना चाहते हैं। अब जानेंगे कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल मौसम साफ रहेगा। वहां का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। एडलेड में बारिश होने के आसार रहेंगे। वहां का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में कल धूप रहेगी। यहां का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। कैनबेरा में कल धूप खिली रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। सिडनी में कल बादल छाएंगे। वहां का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में कल बारिश रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। डार्विन में बादल छाए रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।